टेलीविजन घर में ना हो तो बच्चे दूसरे घर जाते हैं, क्या करें? क्यों आदत डाली थी बच्चों को टेलीविजन की? पहले खुद देखकर बच्चों को टेलीविजन की आदत डाली, अब टेलीविजन नहीं होता तो बच्चे दूसरे घरों में जाते हैं, ये सजा उठानी पड़ेगी। हमने पहले खुद बच्चों को आदत डाली थी, ना होता घर में तो क्या आदत, क्यों बच्चों की तरबियत नहीं की? एक आदमी को जानता हूं मैं फैसलाबाद में, बंदा खुदा के घर में गया, मैंने देखा टेलीविजन नहीं था। मैंने पूछा टेलीविजन क्यों नहीं है? कहने लगा मैंने 60s में, पता नहीं 64-65 में इमाम खुमैनी को खत लिखा था, उस जमाने में इमाम का मुखल्लिद था। कोई बात है, उस जमाने में इमाम को पहचान था। इमाम खुमैनी कहता मैंने खत लिखा उन्हें और कहा मैं आपका मुखल्लिद हूं और हमारे माशरे के अंदर इस तरह की एक नई चीज आई है, कहा मैंने टेलीविजन सारा बयान किया, ये आया है आपका शरई हुक्म क्या है, मैं आपका मुखल्लिद हूं। लिखा है कि मैं तुम्हें बाप बन के नसीहत कर रहा हूं इसे अपने घर में नहीं लाना। कहा मैं तुम्हें बाप बन के नसीहत कर रहा हूं इसे अपने घर में नहीं लाना। तो इसने बहुत अच्छा जुमला मुझसे कहा, कहने लगा कि उस बड़े आदमी ने मुझे बेटा बनाने का फखर दिया, मैं उसको संभाले हुए हूं कि मैं अच्छा बेटा बनने के लिए टीवी घर में नहीं लाऊंगा। अब हम क्या करेंगे? देखें माशरती मायूसी को हम किस तरह दूर कर सकते हैं, बहुत अच्छा जुमला है। बाद लोग मायूस हो जाते हैं, दो तीन तरह से दूर कर सकते हैं। एक, अपने इमाम की तशरीफ आवरी को सोचकर कि मायूसी हमेशा के लिए नहीं है, इमाम तशरीफ लाएंगे सब खत्म हो जाएगा, बेहतर हो जाएगी दुनिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि माशरे के अंदर बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव हो रही हैं, बहुत सारी चीजें जो हिम्मत दिलाने वाली हैं। अब मायूसी कम होनी चाहिए थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की ताकत के इजहार का जमाना है, उनके मानने वालों की ताकत जाहिर हो रही है, आप और मेरी ताकत जाहिर नहीं हो रही, दूसरी जगहों पर जाहिर हो रही है। मसलन लुबनान ने मनवा लिया अपने आप को, इराक में मोमिनी ने इराक में अपने आप को मनवाया है, ईरान ने मोमिनी ने अपने आप को मनवाया है, अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के मानने वालों की मजमूई ताकत जाहिर हो रही है। इनको देखें, इनसे हिम्मत हासिल कर, हम भी बहुत कुछ कर सकते थे और कर सकते हैं अगर अपने रास्ते को पहचान लेते। इन्होंने नमाज के बाद होने वाली ज्यारतों का तस्करा किया है, लिखा है, जो इन्होंने लिखा मैं पढ़ देता हूं। हमारे साहिब मेंबर लोग गुमराही की बड़ी वजह है, इस सिलसिले में यानी मिंबर पर बैठने की हुदूद क्राइटेरिया क्या है और बेअमल नाम निहाद उलमा के बारे में कुछ कहें। मैं क्यों कहूं? आपके पास अकल नहीं है? अगर आप जानते हैं कि फला आदमी बेअमल नाम निहाद आलिम है, उसकी मजलिस में दीन लेने क्यों जाते हैं? किसने आपसे कहा कि बेअमल नाम निहाद आलिम आपको दीन देगा? ये दीन नहीं देगा, अपनी दुनिया की खातिर आपका दीन छीन लेगा। क्यों जाते हैं? या आपको शऊर नहीं है तो मुश्किल आपकी है, आपको शऊर क्यों नहीं है? अगर आपको शऊर है तो आप जाते क्यों हैं फिर? मैं आपको गारंटी से अर्ज कर रहा हूं, अगर सिर्फ लोग इतना करें, बेअमल आदमी की मजलिस में ना बैठे, मुंतजिम भी इसको तब्दील कर देगा। मुंतजिम जैसा भी हो उसे नीचे लोग चाहिए, मुंतजिम को नीचे लोग चाहिए। अगर लोग मेयार बना लें कि बेअमल की मजलिस में नहीं जाएंगे, मुंतजिम कैसा ही क्यों ना हो लोग को तब्दील कर देगा, उसको तब्दील करेगा। मुंतजिम दुनियादार हो उसे भी लोग चाहिए, अल्लाह की खातिर कर रहा हो उसको भी लोग चाहिए। तो आप हैं जो फैसला कर रहे हैं, आप हैं जो अपनी फिक्री अय्याशी के लिए, अपनी तफरी के लिए ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं जो नाम निहाद होते हैं, बेअमल होते हैं। क्योंकि आपने उनको इज्जत दी है, उन्होंने आपसे दीन छीना है, आप ना इज्जत देते तो उसमें क्या ताकत थी, कैसे कर सकते थे? एक आदमी अशरा पढ़ने जाता है, अमलन अपनी खुद उस इलाके के अंदर उसी माह मुहर्रम के अंदर मजलिस पढ़ने गया, वहां लोगों ने मुझे बताया, बाद में फिर अगले साल उसी को बुलाया, कहा अशरा पढ़ने आया था, पहले दिन मजलिस पढ़ी 40 मिनट 45 मिनट, صاحب خانہ نے کہا کہ بندہ خدا آپ کو سننے کے لیے لوگ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے یہاں تک آئے تھے, آپ نے 40-45 منٹ مجلس پڑھی. اس نے کہا 8 لاکھ میں تو یہی ہوگا. کہنے کا 8 لاکھ میں تو یہی ہوگا. آپ نے دیکھا کہ یہ ایسا ہے, اگلے سال پھر بلایا. اب اس کا حق ہے کہ آپ سے دین لے لے. کیوں آپ اتنے کم عقل ہو؟ اس لیے کم عقلی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دیکھ رہے تھے کہ یہ دنیا کی خاطر کر رہا تھا تو پھر اس کو کیوں ممبر حسین پہ بٹھایا تھا؟ اور اگر ممبر حسین کو اتنی کم قیمت سمجھا تھا تو پھر اس کا حق ہے کہ دین لے لے. سوسائٹی میں ویلیوز کیسے چینج ہوتی ہیں, اس کا اپنا ایک میکینزم ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. معمولاً ویلیوز اوپر سے نیچے کی طرف چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا, بہت دیر ہو جائے گی اس میں. لکھا ہے میں ہندو ہوں اور محبان اہل بیت میں سے ہوں, میرا چھٹکارا ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑی حقیقت خدا ہے. خدا کو مانتے ہو, نبوت نبی اکرم پہ یقین ہے, حب اہل بیت ہے, چھٹکارا ممکن ہے. خدا کو نہیں مانتے, چھٹکارا ممکن نہیں ہے. ممکن ہے کسی اچھائی کے نتیجے میں کسی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی, ممکن ہے کسی اچھائی کے نتیجے میں کسی عذاب سے بچ جاؤ, ممکن ہے اس حب اہل بیت کے نتیجے میں یہاں پر دنیا میں کوئی چیز مل جائے گی. لیکن اصل نجات خدا نمتال کی کمالات کے اوپر پہنچنا سوائے خدا نمتال کی تسلیم کے نبی اکرم کی نبوت اور حب اہل بیت کے امکان پذیر نہیں ہے. اس کے بعد عجیب ہے, اگر واقعا محب اہل بیت ہو تو یہ کیوں نہیں دیکھا کہ اہل بیت نے کس سے محبت کی تھی؟ اگر واقعا محب اہل بیت ہو تو کیا خدا نمتال نے خدا نمتال کو نہیں چاہا اہل بیت نے؟ سید الشہداء نے اس آخری سجدے میں رزن میں قضائے تسلیم نے امر کس کے لیے کہا تھا؟ آئے بتوں کے لیے کہا تھا یا خدا وحدہ لا شریک کے لیے کہا تھا؟ وہ جو سید الشہداء کربلا کے میدان میں قربانی دے رہے تھے وہ کس کے لیے کہہ رہے تھے میں نواسۂ رسول ہوں؟ کیا وہ نہیں کہہ رہے تھے میں رسول کا نواسا ہوں؟ کس رسول کے نواسے تھے؟ اگر تم واقعا محب اہل بیت ہو تم نے حقیقت کیوں نہیں پہچانا تھا؟ کیسی محبت دکھائی تھی؟